लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कॉन्क्लेव मिसा बलिदान में कार्डिनल जोवानी बप्तिस्ता रे का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष कार्डिनल जोवानी बप्तिस्ता रे ने नए संत पापा के चुनाव का मिसा बलिदान संत पेत्रुस महागिरजाघर में अर्पित किया। कार्डिनल रे ने अपने प्रवचन में कहा, हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि यीशु के स्वर्गारोहण उपरांत प्रेरित गण यीशु की माता मरियम के संग मिलकर पेंतेकोस्त पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा में एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरित संत पेत्रुस के कब्र के ऊपर निर्मित इस महागिरजा घर के बगल की बेदी में माता मरियम की निगाहों तले कॉन्क्लेव को शुरू करने के कुछ घंटों पूर्व हम भी वही कर रहे हैं। हम अपने को ईश प्रजा के संग विश्वास, संत पापा के लिए प्रेम और उम्मीद की भावना में संयुक्त पाते हैं। कार्डिनल बप्तिस्ता रे ने कहा,
Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo.
कि हम यहाँ पवित्र आत्मा की सहायता मांगने, उनकी ज्योति और शक्ति की चाह लिए आते हैं, जिससे नवनियुक्त होने वाले संत पापा वे हों जिससे कलीसिया और मानवता के इतिहास इस कठिन, जटिल और उथल पुथल दौर में जरूरी है। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए प्रार्थना करना ही हमारे लिए सही और उचित मनोभाव है। जब हम कार्डिनल निर्वाचकों को सर्वोच्च मानवीय और कलीसियाई जिम्मेदारी का कार्य करने और अति विशिष्ट चुनाव के लिए तैयार पाते हैं, यह मानवीय कार्य है जो हमें व्यक्तिगत विचारों से पृथक होने और सिर्फ यीशु ख्रिस्त को दिल और दिमाग में तथा कलीसिया और मानवता की भलाई को ध्यान में रखने की मांग करता है। कार्डिनल जोवानी बप्तिस्ता रे ने कहा कि सुसमाचार जिसकी घोषणा की गई हमारे हृदय में उन वचनों को ध्वनित करता है जो यीशु के संदेश और साक्ष्य को हमारे लिए लाते हैं, जिसे उन्होंने संध्या अंतिम व्यारी की कोठरी में अपने प्रेरितों से कहा, यह मेरी आज्ञा है, तुम एक दूसरे को प्रेम करो जैसे कि मैंने तुम्हें किया है। यहाँ हम इस बात की स्पष्टता को पाते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें प्रेम किया है। यीशु इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे।
Il messaggio dell'amore che Gesù definisce comandamento nuovo.
यह हमारे लिए प्रेम का संदेश है जिसे यीशु हमारे लिए एक नई आज्ञा के रूप में देते हैं। यह नई आज्ञा है क्योंकि हम इसमें पुराने विधान के नियम जिसमें कहा गया था दूसरों के साथ वैसा मत करो जैसे तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ किया जाए, कुछ सकारात्मक और एक वृहद विस्तार को पाते हैं। कार्डिनल रे ने कहा कि यीशु के द्वारा प्रकट किए जाने वाले प्रेम की कोई सीमा नहीं है और यह विचारों और कार्यों में परिलक्षित होने की मांग करता है। यह हमें अपने सच्चे प्रेम को व्यवहार में और एक नई संस्कृति के निर्माण में निष्ठामय तरीके से व्यक्त करने का आह्वान करता है, जैसे कि संत पापा पॉल छाटवे ने इसे प्रेम की सभ्यता स्वरूप निरूपित किया। दुनिया को बदलने की शक्ति सिर्फ प्रेम में है। यीशु ने हमें इस प्रेम का साक्ष्य अंतिम भोज के शुरू में एक आश्चर्यजनक निशानी में दिया। उन्होंने दूसरों की सेवा में अपने को नम्र बनाया। बिना किसी भेदभाव के उन्होंने प्रेरितों के पैर धोए। उन्होंने यूदस को भी अपने से अलग नहीं किया, जो उन्हें धोखा देने वाला था। यीशु का यह संदेश हमें आज के प्रथम पाठ से संयुक्त करता है, जिसे हमने नबी इसाइयास के ग्रंथ में सुना, जो प्रेरितों के जीवन का मूलभूत गुण है, जो उन्हें पूर्ण बलिदान करने तक प्रेम करने की मांग करता है। कार्डिनल रे ने कहा,
dei testi liturgici di questa celebrazione eucaristica ci viene pertanto un invito all'amore fraterno.
इस युखारिस्तीय धर्म विधि के पाठ हमें भ्रातृत्व में प्रेम, आपसी सहयोग, कलिस्य की एकता और सार्वभौमिक मानवीय बंधुत्व के प्रति प्रतिबद्धता हेतु निमंत्रण देते हैं। पेत्रुस के उत्तराधिकारी के कार्यों में से एक है एकता स्थापित करना। ख्रीस्त के संग सभी ख्रिस्तियों की एकता, संत पापा का धर्माध्यक्षकों के संग एकता, धर्माध्यक्षकों के बीच आपसी एकता, यह कोई आत्म संदर्भित एकता नहीं है, बल्कि यह पूर्ण रूपेण व्यक्तियों, देशों और संस्कृतियों के बीच एकता है, जहां हम कलिस्य को सदैव एकता का निवास और विद्यालय स्वरूप पाते हैं। यह हमारे लिए कलिस्य द्वारा उस मार्ग में चलने की बात को मजबूती से व्यक्त करता है, जिसका अनुसरण प्रेरितों ने किया। कलिस्य की एकता ख्रीस्त की योजना है। इस एकता का अर्थ अपने में एक रूपता नहीं है, बल्कि विभिन्नताओं में यह एक दृढ़ और गहरी एकता है, बशर्ते कि सुसमाचार के प्रति निष्ठा कायम रहे। कार्डिनल रे ने कहा कि हर संत पापा संत पेत्रुस और उसकी प्रेरिताई का एक मूर्त रूप होता है, और इस भांति वह पृथ्वी पर ख्रिस्त का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक चट्टान की भांति है, जिस पर कलिस्य की नींव स्थापित की गई है। नए संत पापा का चुनाव व्यक्तियों का एक साधारण उत्तराधिकार नहीं है, हालांकि इस चुनाव में हम सदैव प्रेरित पेत्रुस को लौट कर आता पाते हैं। कार्डिनल निर्वाचकों के द्वारा सिस्टीन चैपल में मतदान दिया जाएगा। यह वह स्थल है जिसके संबंध में प्रेरितिक संविधान यूनिवर्सी डोमिनिची ग्रेजिस कहता है, हर चीज ईश्वरीय उपस्थिति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है, जिनकी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति का एक दिन न्याय किया जाएगा। संत पापा योहन पॉलुस द्वितीय ने अपने रोमन त्रिप्टिक में इस आशा को व्यक्त किया है कि इस गंभीर निर्णय के लिए मतदान करना हर एक को चित्रकार माइकल अंजेलो द्वारा की गई चित्रकारिता न्यायाधीश यीशु के छवि की याद दिलाए, जिसे वे महाकुंजियों को सही व्यक्ति के हाथों में सुपुर्द करने की जिम्मेदारी लें। अतः आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, जिन्होंने पिछले 100 वर्षों में हमारे लिए सच्चे, पवित्र और महान संत पापाओं की एक श्रृंखला प्रदान की है, हमें कलिसिया और मानवता की भलाई के लिए ईश्वरीय हृदय के अनुसार अब एक संत पापा प्रदान करें।
Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa il Papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti.
आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर कलिस्य को एक ऐसे संत पापा प्रदान करें, जो इस बात से वाकिफ हों कि आज के समाज में सबों के विवेक, नैतिक तथा आध्यात्मिक ऊर्जा को किस तरह से जागृत किया जाए, जो बृहद तकनीकी प्रगति से चिन्हित है, लेकिन जो ईश्वर को भूलने की प्रवृत्ति रखती है। आज की दुनिया कलिस्य से उन मौलिक मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों की सुरक्षा के संबंध में बहुत अपेक्षा रखती है, जिनके बिना मानव सह अस्तित्व बेहतर नहीं होगा और न ही यह भावी पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। कुमारी माता मरियम, कलिस्य की माता, हमारी प्रार्थना की बिचवई करें, जिससे पवित्र आत्मा कार्डिनल निर्वाचकों की बुद्धि को आलोकित करें और वे हमारे समय के लिए जरूरी संत पापा हेतु सहमत हो सकें।
सब है क्रिस्त के शरीर, कलीसिया के वो है शीश,
बपतिस्मा में एक जीवन जीना हमें है प्रभु का जीवन, प्रेम भरोसा विश्वास का जीवन, कलीसिया से प्रेम करो, पवित्र आत्मा का वो वरदान, कलीसिया से प्रेम करो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। नए संत पापा के चुनाव के लिए पवित्र मिसा समारोह से लेकर सफेद धुएं तक वाटिकन मीडिया वीडियो और ऑडियो के माध्यम से कॉन्क्लेव लाइव देखने का प्रसारण प्लेटफॉर्म और आवृत्तियां प्रदान करता है। नए संत पापा के चुनाव की तैयारी के लिए कॉन्क्लेव की शुरुआत के साथ वाटिकन मीडिया प्रत्येक चरण को पल पल कवर करने के लिए जुट गया है। कवर किया जाने वाला पहला कार्यक्रम रोमन पोप के चुनाव के लिए पवित्र मिस्सा था, जो 7 मई को सुबह 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर में संपन्न हुआ। दोपहर शाम 4:30 बजे कार्डिनल निर्वाचक कॉन्क्लेव में प्रवेश करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा ओमने से पहले उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। वह क्षण जब सिस्टीन चैपल के दरवाजे मतदान शुरू करने के लिए बंद हो जाते हैं। इस समारोह को अंग्रेजी, स्पैनिश, इतालवी भाषा के अलावा 11 भाषाओं में लाइव प्रसारित किया जाएगा। वाटिकन मीडिया दोनों कार्यक्रमों का वीडियो और फोटो कवरेज उपलब्ध कराएगा। 7 मई की दोपहर से नए संत पापा के चुनाव का संकेत देने वाले सफेद धुएं के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। वाटिकन न्यूज और वाटिकन रेडियो कॉन्क्लेव की कार्यवाही का प्रतिदिन लाइव कवरेज प्रदान करेंगे। रिपोर्ट वोटों के परिणामों और परिणामी धुएं के संकेतों का दस्तावेजीकरण करेगी, जो सुबह के अंत में और दिन के अंत में दिखाई देंगे। यदि काला है या मध्य सुबह या मध्य दोपहर में भी दिखाई देंगे यदि सिस्टीन चैपल की चिमनी में सफेद धुआं उठता है। जिस क्षण सफेद धुआं दिखाई देगा, फेसबुक पर 10 भाषाओं में लाइव प्रसारण के माध्यम से नए संत पापा के प्रत्याशा के प्रमुख क्षणों को दिखा पाना संभव होगा। उधर यूरोपीय संसद ने स्ट्रासबर्ग में अपना वार्षिक सत्र शुरू किया, जिसमें दिवंगत संत पापा फ्रांसिस को नैतिक अधिकार और एकता की आवाज के रूप में सम्मानित किया गया। जब कार्डिनल निर्वाचक 7 मई को कॉन्क्लेव के लिए सिस्टीन चैपल में इकट्ठा हो रहे हैं, तो दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और नेतागण दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की विरासत को श्रद्धांजलि देना जारी रखते हैं। यूरोपीय संसद ने सोमवार 5 मई को स्ट्रासबर्ग में अपना वार्षिक सत्र खोला, जिसमें दिवंगत संत पापा के लिए मौन छन के साथ आधिकारिक स्मरणोत्सव मनाया गया। स्मारक समारोह की शुरुआत करते हुए यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के एकता और करुणा के स्थायी संदेश पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, उन्हें उनके प्रेरक नेतृत्व, नैतिक अधिकार और दयालुता के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने अधिक मानवीय, शांतिपूर्ण और एकजुट दुनिया के पक्ष में बोलने के हर अवसर का लाभ उठाया। अपने भाषण में मेट्सोला ने 2014 में स्ट्रासबर्ग में अपनी यात्रा के दौरान संसद की अतिथि पुस्तिका में लिखे गए संदेश को याद किया और उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने अपनी आशा व्यक्त की थी कि यूरोप अपने अतीत से अवगत भविष्य को विश्वास के साथ देख सकता है और वर्तमान को आशा के साथ जी सकता है। उन्होंने कहा, जबकि यह सभा उनके निधन पर शोक व्यक्त करती है, हम एक बेहतर, अधिक दयालु और साहसी यूरोप के लिए सभी से कार्यवाही और सहयोग करने के उनके आह्वान को भी याद करते हैं। केंद्रीय यूरोप पीपुल्स पार्टी के मैनफ्रेड बेवर ने ख्रिस्तीय पहचान और एकता में निहित यूरोप के बारे में दिवंगत संत पापा के दृष्टिकोण पर जोर दिया। पेट्रियाट्स संसदीय समूह के फ्रांसीसी जॉर्डन बारडेला ने दिवंगत संत पापा को संवाद का व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया, जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर लोगों की गहराई से परवाह की। कंजर्वेटिव संसदीय समूह के इतालवी निकोला प्रोकासिनी ने वैश्विक रूप से जुड़ी कलीसिया के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, हालांकि प्रवासन नीतियों पर अलग अलग विचारों को स्वीकार किया। उधर सूडान की सेना और अर्ध सैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच युद्ध, मौत, विनाश और विस्थापन जारी है। यह पूर्वोत्तर अफ्रीकी राष्ट्र के पहले शांत क्षेत्रों में फैल रहा है। लगातार तीसरे दिन सूडान के मुख्य समुद्री बंदरगाह पोर्ट सूडान में कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई पड़ी और भीषण आग लग गई, जहां दो साल से युद्ध के दौरान सैकड़ों हजारों विस्थापित लोगों ने शरण ली है। मंगलवार को आरएफएस द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में कथित तौर पर ईंधन डिपो सहित कई स्थानों को निशाना बनाया गया। एक होटल और सूडान के मुख्य बिजली सब स्टेशन पर भी हमला किया गया, जिससे पूरा शहर ब्लैक आउट हो गया। रिपोर्टर ने बताया कि नागरिकों को हवाई अड्डे और होटल से निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि वे शहर के अन्य हिस्सों से शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो संघर्ष से विस्थापित सैकड़ों हजारों लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय बन गए हैं। रविवार को शुरू हुए लाल सागर के तटीय शहर पर हमले लड़ाई में तेज वृद्धि को दर्शाते हैं, क्योंकि इस सप्ताह तक पोर्ट सूडान जमीनी और हवाई हमलों से अछूता रहा था। सेना और आरएसएफ के बीच युद्ध अप्रैल 2023 में तब शुरू हुआ जब नागर सरकार में बदलाव को लेकर विवाद ने दो पक्षों के बीच सत्ता संघर्ष को जन्म दिया। इस संघर्ष ने सूडान में 12 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया है और आधी आबादी को तीव्र भूखमरी में ढकेल दिया है। उधर पिछले महीने भारत प्रशासित कश्मीर में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या के प्रतिशोध में भारतीय हवाई हमलों के बाद कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव नाटकीय रूप से बढ़ गया है। यह हमला कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादियों द्वारा किया गया था। परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बुधवार को नाटकीय रूप से बढ़ गया, जो पिछले दो दशकों में सबसे गंभीर सैन्य टकराव था। भारतीय अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादी समूहों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़े 9 आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इस कदम का भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पूर्व निवारक और एहतियाती के रूप में बचाव किया। भारत का दावा है कि शिविरों का इस्तेमाल भर्ती, विचारधारा और अभियान शुरू करने के लिए किया गया था। पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया है और भारत पर युद्ध की खुली कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।